तो आज हम एंथनी डोर के पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता उपन्यास ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में है, लेकिन ये तोपों और टैंकों की कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
ये इंसानियत के उन छोटे छोटे दीपकों की कहानी है जो सबसे घने अंधेरे में भी टिमटिमाते रहते हैं। डोर एक अमेरिकी लेखक है और उनकी खूबी है उनका काव्यात्मक गद्य और विज्ञान के प्रति गहरा लगाव। हाँ, तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध के बीच इंसानियत कैसे जिंदा रहती है और वो कौन सी रोशनी है जिसे हम देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं।
इसकी शुरुआत ही दो ऐसी दुनियाओं से होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, मतलब जैसे दिन और रात। एक तरफ पेरिस में है मैरी लॉर लेब्लांक, एक छोटी सी लड़की जो 6 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो देती है।
अच्छा।
उसके पिता डैनियल, जो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में ताले बनाने के माहिर है, वो उसके लिए एक अविश्वसनीय काम करते हैं।
क्या करते हैं?
वो पूरे पेरिस शहर का एक छोटा हूबहू लकड़ी का मॉडल बनाते हैं।
कमान है।
ताकि मैरी लॉर अपनी उंगलियों से उसे छूकर शहर की गलियों को याद कर सके। उसकी दुनिया देखने की नहीं बल्कि छूने, सुनने और सूंघने की दुनिया बन जाती है।
और यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है, मतलब एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार इतना गहरा है कि वो उसके लिए उंगलियों से महसूस करने के लिए पूरा शहर बना देता है।
हाँ,
ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं, ये तो उम्मीद का नक्शा है। और इसी के समानांतर लेखक हमें जर्मनी ले जाता है, एक कोयला खदान वाले कस्बे में, ज़ोल्वेरिन में। वहां क्या चल रहा है?
वहां एक अनाथ लड़का है, वर्नर फेनिक। उसकी किस्मत तो जैसे खदान के अंधेरे में लिखी जा चुकी है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान की एक ऐसी भूख है जो उस अंधेरे को चीरना चाहती है, और उसे एक रास्ता मिलता है।
कैसे?
एक टूटे हुए शॉर्टवेव रेडियो की शक्ल में, अपनी बेमिसाल प्रतिभा से वो उसे ठीक कर लेता है, और अचानक पूरी दुनिया की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती हैं।
तो एक तरफ एक ऐसी लड़की है जो देख नहीं सकती, और दूसरी तरफ एक लड़का जो खदान के अंधेरे में फंसा है। लेखक इन दो बिल्कुल अलग जिंदगियों को एक साथ क्यों ला रहा है?
मुझे लगता है यही उपन्यास का मूल विचार है, अदृश्य जुड़ाव।
अच्छा।
मैरी लॉर की दृष्टिहीनता और वर्नर का रेडियो सुनना दोनों ही हमें उस दुनिया के बारे में बताते हैं जो हमारी आंखों की पहुंच से बाहर है।
सही बात है।
वर्नर और उसकी बहन जट्टा को उसी रेडियो पर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक का प्रसारण सुनने को मिलता है। वो विज्ञान, संगीत और दुनिया के अजूबों की बातें करता है। ये प्रसारण वर्नर के लिए अंधेरे में एक रोशनदान की तरह है।
ज्ञान की एक रोशनी।
हाँ, ज्ञान की एक ऐसी रोशनी जो उसे पहली बार महसूस होती है।
ये नियति का एक अजीब खेल है कि वो प्रसारण जिसे वर्नर सुनता है वो दरअसल मैरी लॉर के परदादा एटियन अपने घर से कर रहे होते हैं। दो बच्चे एक ही अदृश्य धागे से जुड़े हुए और उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं। लेकिन 1940 में जब जर्मनी फ्रांस पर हमला करता है तो ये अदृश्य धागा तनावग्रस्त हो जाता है।
बिल्कुल। दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। पेरिस पर नाजी कब्जे के बाद डैनियल को संग्रहालय का एक बेशकीमती हीरा,
सी ऑफ फ्लेम्स,
हाँ सी ऑफ फ्लेम्स, जिसे शॉपेट भी माना जाता है, उसे बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है।
तो वो भाग जाते हैं।
उसे लेकर वो 12 साल की मैरी लॉर के साथ भाग निकलता है और वे सेंट मालो शहर में अपने एकांतवासी चाचा एटियन के घर पना लेते हैं।
और उधर जर्मनी में वर्नर के लिए भी एक दरवाजा खुलता है, लेकिन वो दरवाजा उसे कहाँ ले जाता है?
उसकी रेडियो ठीक करने की काबिलियत एक बड़े नाजी अफसर की नजर में आ जाती है। उसे खदानों की घुटन से निकलकर विज्ञान की दुनिया में जाने का मौका मिलता है, शुलफोटा नाम की एक एलीट नाजी मिलिट्री एकेडमी में।
ये तो उसके सपनों के सच होने जैसा होगा।
बिल्कुल। पर उसकी बहन जट्टा इस चमक के पीछे का अंधेरा देख लेती है। वो उसे एक ऐसा सवाल पूछती है जो पूरी कहानी में वर्नर का पीछा करता है।
क्या कोई काम सिर्फ इसलिए करना सही है क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं?
हाँ, यही सवाल।
और ये सवाल वर्नर के नैतिक संकट का केंद्र बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है, क्या अपनी प्रतिभा को निखारने का लालच हमें नैतिक रूप से अंधा बना सकता है?
वो सोचता है कि वो सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे बदल सकता है, लेकिन अंत में सिस्टम उसे बदल लेता है।
एकदम सही। शोलफट्टा में उसकी प्रतिभा को तराशा तो जाता है, लेकिन उसे एक हथियार बना दिया जाता है। उसे दुश्मन के रेडियो प्रसारणों को ढूंढकर उन्हें तबाह करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
और वो अपने दोस्त फ्रेडरिक का क्या करता है? वो अपने सबसे प्यारे दोस्त फ्रेडरिक, जो कि एक प्रकृति प्रेमी और कोमल दिल का लड़का है, पर होते हुए जुल्म को चुपचाप देखता है, फ्रेडरिक को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो नाजी विचारधारा की क्रूरता में फिट नहीं बैठता।
और ये देखकर वर्नर के अंदर की मासूमियत
धीरे धीरे मरने लगती है। वो जानता है कि जो हो रहा है वो गलत है, पर वो चुप रहता है अपनी जगह बचाने के लिए।
और दूसरी तरफ सेंट मेलो में मैरी लॉर अपनी लड़ाई लड़ रही है। उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो अकेली रह जाती है।
हाँ,
लेकिन उसके पिता ने उसे जो सबसे बड़ा तोहफा दिया था वो था आत्मनिर्भरता। वो फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन का हिस्सा बन जाती है।
वो और उसके परदादा एटीएन घर के अटारी में छिपे एक शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमीटर से मित्र देशों के लिए खुफिया संदेश प्रसारित करने लगते हैं।
तो अब कहानी में विरोधाभास देखिए।
हाँ।
वर्नर की प्रतिभा, जिसका इस्तेमाल वो कभी ज्ञान पाने के लिए करता था, अब उसी जैसे लोगों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है।
जिस वीडियो ने उसे उम्मीद दी थी वही अब मौत का औजार बन गया है।
और फिर अगस्त 1944 में सब कुछ सेंट मालो में आकर मिल जाता है। मित्र देशों की सेना शहर पर बमबारी कर रही है और पूरा शहर आग की लपटों में है।
हाँ, नियति ने अपनी बिसात बिछा दी है और सारे मोहरे एक ही खाने में आ गए हैं। मैरी लॉर अपने घर में अकेली फंसी हुई है और अटारी से आखिरी बार रेडियो पर संदेश प्रसारित कर रही है।
और वर्नर,
उसी शहर में वर्नर की यूनिट को इसी प्रसारण को ढूंढ निकालने का काम सौंपा गया है। और इसी बीच एक बीमार और जुनूनी नाजी अफसर वॉन रेम्पेल,
वो हीरे के लिए आता है।
हाँ, वो सी ऑफ फ्लेम्स हीरे की तलाश में मैरी लॉर के घर पहुंच जाता है। उसे यकीन है कि वो हीरा उसे अमर बना देगा।
तो यहाँ आकर भाग्य और इच्छा शक्ति की लड़ाई अपने चरम पर है। वर्नर मैरी लॉर के प्रसारण को सुनता है
और वो उस आवाज को पहचान लेता है।
हाँ, वो संगीत और उस आवाज को पहचान लेता है जिसने सालों पहले उसके अंधेरे बचपन में रोशनी भरी थी। अब उसके सामने एक चुनाव है,
या तो फर्ज
या फिर
जमीर। और वो अपने जमीर को चुनता है। अपराध बोध और सालों के दबे हुए अफसोस से भरा हुआ वो अपने अफसर को रिपोर्ट नहीं करता।
वो जाता है उसे बचाने।
हाँ, वो बमबारी के बीच से होकर मैरी लॉर के घर पहुंचता है और उसे वॉन रेम्पेल से ठीक उस वक्त बचाता है जब वो उसे मारने वाला होता है।
उन दोनों का मिलना वो कहानी का दिल है ना?
बिल्कुल। दो दुनियाएं जो युद्ध और नफरत ने बांट दी थी इंसानियत के एक छोटे से पल में जुड़ जाती हैं।
ये एक बहुत ही मार्मिक क्षण है।
उन्हें पता चलता है कि वे सालों से एक दूसरे से एक अदृश्य तरंग के जरिए जुड़े हुए थे। वर्नर को लगता है जैसे वो उस आवाज के स्रोत तक पहुंच गया है जिसने उसे हमेशा जिंदा रखा।
लेकिन ये मिलन बहुत छोटा है।
बहुत छोटा। वर्नर मैरी लॉर को शहर से सुरक्षित निकलने में मदद करता है। मैरी लॉर उस हीरे को समुद्र की एक गुफा में छोड़ आती है, उसे प्रकृति को वापस लौटा देती है।
और वर्नर का क्या होता है?
उसके बाद वर्नर को मित्र देशों की सेना पकड़ लेती है। एक रात युद्धबंदी शिविर में तेज बुखार की हालत में वो गलती से एक बारूदी सुरंग पर पैर रख देता है
और उसकी मौत हो जाती है।
उसका अंत बहुत ही अचानक और दुखद है। वर्नर का अंत हमेशा दिल में एक कसक छोड़ जाता है, लेकिन क्या उसका आखिरी काम मैरी लॉर को बचाना उसकी मानवता की जीत नहीं थी?
हाँ, शायद यही बात है।
शायद लेखक यह कहना चाहता है कि एक अच्छा काम भी आपके सारे बुरे कामों को मिटा नहीं सकता, लेकिन वो आपके जीवन को एक अर्थ जरूर दे सकता है।
बिल्कुल। और मैरी लॉर एक लंबी भरपूर जिंदगी जीती है। वो एक जानी मानी समुद्री जीवी विज्ञानी बनती है।
उसका जीवन इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और जिज्ञासा की भावना हर विनाश पर जीत हासिल कर सकती है।
उपन्यास हमें कड़वी मीठी उम्मीद के साथ छोड़ता है। वर्नर मर गया, लेकिन उसका आखिरी फैसला उसकी आत्मा की जीत थी। तो अंत में ये कहानी हमें उस रोशनी के बारे में क्या बताती है जिसे हम देख नहीं सकते? ये शीर्षक सिर्फ मैरी लॉर की दृष्टिहीनता से कहीं ज्यादा गहरा है।
ये रेडियो की अदृश्य तरंगे हैं जो ज्ञान और नफरत दोनों फैला सकती हैं।
सही है।
ये सी ऑफ फ्लेम्स हीरे की चमक है जो लालच और सुंदरता दोनों का प्रतीक है।
ये डैनियल के बनाए लकड़ी के मॉडलों में छिपा पिता का प्यार है।
और सबसे बढ़कर
ये इंसानी दया और करुणा की वो रोशनी है जो सबसे क्रूर समय में भी किसी न किसी दिल में जिंदा रहती है। वर्नर के आखिरी फैसले में हमने वही रोशनी देखी।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी इंसानियत की एक छोटी सी किरण जीवित रह सकती है।
और ये कि जो सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव होते हैं वे अक्सर अदृश्य ही रहते हैं, ठीक उस रोशनी की तरह जिसे हम देख नहीं सकते। ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज की डिजिटल दुनिया में, जहां हम सब अदृश्य तरंगों से जुड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम कौन सी रोशनी फैला रहे हैं और कौन सा अंधेरा? ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।